श्रीशुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार गजेंद्रम गजेंद्र को उपवर्णित जिसका वर्णन निर्विशेषम किसी विशेष व्यक्ति के लिए न होकर किंतु ब्रह्म के लिए यद्यपि वह यह नहीं जानता था कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्मा आदयः ब्रह्मा शिव इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता विविध नाना प्रकार के लिंग भिदा पृथक पृथक स्वरूपों से अभिमाना अपने को पृथक सत्ता मानते हुए न नहीं एते सभी यदा जब उपससृपुः पास आया निखिल आत्मकत्वात् भगवान के हर एक के परमात्मा होने से तत्र वहां अखिल ब्रह्मांड का अमरमय देवताओं से युक्त जो शरीर के केवल बाहरी अंग हैं हरि ही भगवान जो हर वस्तु को छीन सकते हैं आविरासित प्रकट हुआ हाथी के समक्ष। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा जब गजेंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर परम पुरुष का वर्णन कर रहा था तो उसने ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र इत्यादि देवताओं का आह्वान नहीं किया अतएव इनमें से कोई भी उनके पास नहीं आए। किंतु चूंकि भगवान हरि परमात्मा पुरुषोत्तम हैं अतएव वे गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तात्पर्य गजेंद्र के वर्णन से लग रहा है कि वह किसी परम सत्ता को लक्ष्य कर रहा था यद्यपि उसे यह कोई पता न था कि यह परम सत्ता कौन है। उसने अटकल लगाई ऐसी कोई परम सत्ता अवश्य है जो सबों से ऊपर है। ऐसी स्थिति में भगवान के विविध अंशों ने यथा ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र इत्यादि ने सोचा कि यह तो सहायता के लिए हमें नहीं बुला रहा यह तो उस ब्रह्म को बुला रहा है जो हम सबों से ऊपर है। जैसा कि गजेंद्र ने वर्णन किया है भगवान के विविध अंश हैं जिनमें देवता मनुष्य तथा पशु सम्मिलित हैं जो विभिन्न रूपों से आच्छादित हैं। यद्यपि देवताओं के जिम्मे ब्रह्मांड के विविध भागों की देखभाल का उत्तरदायित्व है किंतु गजेंद्र ने सोचा कि ये सब उसकी रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। हरिम विना नैव मृतिम तरंती कोई भी व्यक्ति किसी को जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के संकट से बचा नहीं सकता। केवल भगवान ही संसार के खतरों से रक्षा कर सकते हैं अतएव इस भयानक संसार से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के पास जाता है किसी देवता के पास नहीं। जैसा कि भगवत गीता 7वें अध्याय 20वें श्लोक में पुष्टि की गई है कामैस्तैस्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग अज्ञानी हैं वे क्षणिक भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये देवता जीव को भौतिक संसार के खतरों से बचा नहीं सकते। अन्य जीवों की तरह देवता भी भगवान के दिव्य शरीर के ब्रह्म दिव्य शरीर के बाह्य अंग मात्र हैं। जैसा कि वैदिक मंत्रों में कहा गया है, स आत्मा अंगान्य अन्य देवता। शरीर के भीतर आत्मा रहता है और शरीर के विभिन्न भाग जैसे हाथ पांव बाह्य हैं। इसी प्रकार समग्र विश्व की आत्मा नारायण या भगवान विष्णु है और सारे देवता मनुष्य तथा अन्य जीव उनके शरीर के अंग हैं। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चूंकि वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर जीवित रहता है और जब जड़ों को पानी दिया जाता है तो वृक्ष के सारे अंगों को भोजन मिल जाता है, उसी तरह मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की पूजा करे जो सबों के आदि मूल हैं। यद्यपि भगवान के पास तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, किंतु वे हमारे अत्यंत समीप रहते हैं क्योंकि उनका वास हमारे हृदय में होता है। ज्यों ही भगवान यह समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य पूर्णतया उनकी शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, त्यों ही वे तुरंत कार्यवाही करते हैं। फलतः गजेंद्र की रक्षा करने के लिए यद्यपि देवता नहीं आए, किंतु उसकी भाव प्रवण स्तुति के कारण भगवान तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हुए। इसका अर्थ यह है कि देवता गजेंद्र से अप्रसन्न इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता गजेंद्र से अप्रसन्न थे, बल्कि वास्तव में वह विष्णु की पूजा की जाती है तो अन्य सारे देवताओं को भी पूजा हो जाती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, यदि भगवान प्रसन्न हैं तो सभी प्रसन्न हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युते ज। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना शाखाएं तथा अन्य सभी भाग ऊर्जित हो उठते हैं, जिस प्रकार उदर में भोजन के पहुंचने से इंद्रियां तथा शरीर के अंग चैतन्य हो उठते हैं, इसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद 31वें अध्याय का 14वां श्लोक था ये। जब भगवान की पूजा की जाती है तो सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में ये दिया गया है कि गजेंद्र किस प्रकार अपनी समर्पण की स्तुति कर रहा है भगवान से। तो आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, एवं गजेंद्र उपवर्णित। गजेंद्र किसी के बारे में वर्णन कर रहा है। पिछले कई दिनों से हम लोग यहां सुन रहे थे गजेंद्र की विभिन्न प्रकार की स्तुति, अलग अलग रूप से कैसे गजेंद्र ने बताया कि जो भगवान हैं वो सर्वोच्च हैं और कैसे वो सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं और अन्य जो स्तुति है उनकी वो हमने सुनी। तो आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, जो ये गजेंद्र जो वर्णन कर रहे हैं वे किसका वर्णन कर रहे हैं, भगवान का, पुरुषोत्तम भगवान का। तो जब भी किसी का वर्णन किया जाए तो वह व्यक्ति की कुछ खास बात होनी चाहिए, उसके कुछ गुण होने चाहिए। आम तौर पे अगर देखा जाए कि किसी की हम किसी के वर्णन करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं या किसी की बढ़ाई करते हैं, तो भौतिक जीवन में अगर देखें तो कब कब किसी की बढ़ाई होती है। कोई बड़ा काम कोई करे, किसी के जन्मदिन पे जय श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की जय, किसी का जन्मदिन है तो उनके मित्र परिवार वाले बढ़ाई करेंगे, या एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए तो थोड़ी बढ़ाई हो जाएगी एक आध दिन, या किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद एक सभा का आयोजन होता है तो फिर सब लोग थोड़ा आते हैं सीरियस मोड में, उनकी कुछ अच्छे गुण बताते हैं जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का की मृत्यु हुई है। तो किसी के बारे में वर्णन करना अगर करना है तो भौतिक रूप में अगर देखें तो बहुत ही कम दिन है, साल में एक आध दिन, पूरे जीवन में कुछ ही एक दिन होते हैं जब उनका वर्णन होता है। पर यहां जो वर्णन हम सुन रहे हैं वो भगवान का है, पुरुषोत्तम भगवान का। तो भगवान के वर्णन के लिए कोई स्पेशल ओकेजन होना की आवश्यकता नहीं है, नित्यम भागवत सेवा, हम रोज भगवान का वर्णन सुन रहे हैं और कर रहे हैं। तो ये है खास बात पुरुषोत्तम भगवान की। और इसी प्रकार जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसका भी उसके बारे में भी वर्णन हम प्रतिदिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में यह बताया गया है, जब दीति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे तो वो बहुत भयभीत हो गई। जब उसको पता लगा कि जो ये कश्यप मुनि हैं, उन्होंने बताया कि ये गलत समय पे हम एक साथ हुए और ये जो आपके गर्भ में जो संतान आई है, इनको जो शिव जी हैं उनका जो क्रोध है इनके ऊपर असर आएगा, और जो ये संतान है ये ब्राह्मणों को तंग करेंगी और पूरे जगत में विनाश कार्य करेंगे। तो दीति बहुत भयभीत हो गई, पर जब उन्हें ये पता लगा कि इन दोनों संतानों की मृत्यु जो होगी वो विष्णु के हाथ से होगी, तो वो थोड़ी प्रसन्न हुई। और उसको जब ये पता लगा कि उनके जो पोते होंगे वो कौन होंगे, प्रहलाद महाराज जो कि महाभागवत होंगे, जब उनको ये पता लगा तो वो और प्रसन्न हो गई कि चलो कोई बात नहीं, मेरे बेटे ऐसे निकलेंगे पर मेरा पोता एक जो आएगा हिरण प्रहलाद महाराज वो ऐसा होगा महाभागवत। और वहां पे भागवतम में बताया गया है कि प्रहलाद महाराज ऐसा भक्त होगा जिनकी प्रसिद्धि भगवान की प्रसिद्धि के साथ साथ जाएगी। तो जो शुद्ध भक्त है उसकी प्रसिद्धि इस प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम शुद्ध भक्त के बारे में वर्णन करते हैं तो वो हम उसकी भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं, उसने कैसी सेवा की, वो इतना अच्छा भक्त है, उसने भगवान की सेवा ऐसे की। जब भी भक्त के बारे में बात हो रही है, अर्थात भगवान के बारे में भी बात हो रही है, इसलिए भक्त की प्रसिद्धि भगवान की प्रसिद्धि के साथ साथ जाती है। तो ये वर्णन वहां हुआ है। तो भगवान की प्रसिद्धि क्यों इतनी अधिक है, क्यों उनका वर्णन रोज करना चाहिए, तो ये समझने की बात है। इसीलिए हम ये शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और अन्य शास्त्र, कि हमें पता लगे कि कौन है ये पुरुषोत्तम भगवान, कि क्यों इनकी इनके गुण क्या हैं, इनकी लीला क्या है। और जब हम ये सुनते हैं बार बार तो हम उनका वर्णन और करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, और यही भक्त का जीवन है, कृष्ण का बारे, कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन, और फिर वही स्मरण आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो पहले स्कंद श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें बताया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण जो है वो पुरुषोत्तम है। तो वहां ये वर्णन है, अहो अलम श्लाघ्यतमम यदोकुलम, अहो अलम पुण्यतमम मधोरवनम, यदेश पुंसाम ऋषभ श्रेयपति स्वजन्मना चंक्रमेणेन चांचति। तो वहां क्या दिया है कि दो चीजों के बारे में बताया है कि दो चीजों की प्रसिद्धि बहुत अधिक है। एक तो है यदुकुल, जो यदु महाराज के आगे जो वंश आया, यदु वंश यदुकुल बहुत प्रसिद्ध है, और दूसरी चीज है मधुर वनम, मधुपुरी या मथुरा, मथुरा जो भूमि है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ये दोनों क्यों प्रसिद्ध हैं? क्यों? क्योंकि यदु वंश में श्री कृष्ण आए। तो यदु एक बहुत अच्छे भक्त थे। किसके पुत्र थे यदु? ययाति के पुत्र थे। तो ययाति को जब श्राप मिला शुक्राचार्य से कि वो वृद्ध अवस्था उनको मिल जाएगी, तो वो अपने सारे पुत्रों के पास गए कि मेरी वृद्ध अवस्था ले लो, अपना यौवन मुझे दे दो। तो यदु के पास भी गए, तो यदु बहुत उच्च तरह के भक्त थे, तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण मेरे कुल में आएंगे, तो वो चाहते थे कि जल्दी से अपने यौवन में मैं संतान की उत्पत्ति करूं और जल्दी से मेरा वंश बढ़े और जल्दी से कृष्ण आए। तो अगर वो अपने पिता का की वृद्ध अवस्था ले लेते और फिर उन्हें पता था बाद में उनको फिर यौवन मिलता, तो फिर उनके संतान की उत्पत्ति में समय लग जाता, कृष्ण के आने में थोड़ा और समय लग जाता था। पर जो भक्त है वो बहुत उत्सुक होता है कृष्ण जल्दी आए ना, जैसे नारद मुनि थे, बहुत उत्सुक थे। कंस को जाके भी सारा सीक्रेट बता रहे थे, नहीं, जब कंस उनको अपने बहन को ले जा रहे थे देवकी को और वसुदेव को रथ पे, तो देवताओं ने ऊपर से एक ध्वनि आई और फिर बाद में नारद मुनि ने भी सारी पोल खोल दी। तो भक्त को, भक्त ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कृष्ण आए। तो इसी तरह यदु जो थे वो भी यही चाहते थे, और फिर जब कृष्ण उनके वंश में आए तो आज भी यदु कुल की जो प्रसिद्धि है बहुत अधिक है। और दूसरी जो प्रसिद्धि है वो मथुरा की। मथुरा नगरी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि कृष्ण ने वहां जन्म लिया। स्वजन्मना चंक्रमणे न चांचती, अपना जन्म लिया, सिर्फ जन्म लिया वहां, तो वो जगह प्रसिद्ध हो गई। तो ऐसा किसके बारे में कह सकते हैं कि ये जगह प्रसिद्ध है क्योंकि ये यहां पैदा हुआ? कोई ऐसी जनरली नहीं होता आमतौर पर। पर कृष्ण जो पुरुषोत्तम है, भगवान है, वो जहां भी जन्म लेते वो जगह प्रसिद्ध हो जाती, और जिस वंश में वो जन्म लेते वो वंश प्रसिद्ध हो जाता। ये है उनकी खासियत। और इसी श्लोक में क्या दिया है, यदेश पुंसाम ऋषभ श्रेयपति, जो ये श्रेयपति लक्ष्मी के पति हैं विष्णु या कृष्ण, इनकी क्या खास बात है? पुंसाम ऋषभ, सारे पुरुषों में ऋषभ उच्चतम है, इसलिए जिस वंश में ये जन्म लेंगे, जिस स्थान पर ये जन्म लेंगे वो प्रसिद्ध हो जाएगा, और इसलिए हम इनका वर्णन लगातार कर सकते हैं क्योंकि ये सारे पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे पुरुष का जो आदि पुरुष है, जो सर्वश्रेष्ठ है, पुंसाम ऋषभ जो सब सर्वोच्च है, उनका वर्णन करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए, करनी चाहिए। तो यहां गजेंद्र ने यही दिखाया। तो आमतौर पर अगर हम देखें कि चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो भगवान के पास जाते हैं, है ना, हमने सुना है भगवत गीता से, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नौ अर्जुन आतो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षब। तो इन चार व्यक्तियों में से एक जो व्यक्ति है आर्त, जो बहुत कष्ट में है, भौतिक कष्ट, भौतिक क्लेश है उसे, तो कष्ट में भगवान को याद करता है। तो उस तरह गजेंद्र ने भगवान को याद किया। और ये चारों प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो श्रेष्ठ माने जाते हैं, उदार माने जाते हैं। कृष्ण उनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये पुण्य, ये इन्होंने पुण्य किया है इन चार तरह के व्यक्तियों ने, क्योंकि जो भी कारण है, किसी भी कारण से वो मेरे पास आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कितने सारे जीव जंतु हैं, उनमें से बहुत ही कम मनुष्य हैं, उनमें से बहुत ही कम धर्म का पालन करना चाहते हैं, उनमें से बहुत ही कम मोक्ष चाहते हैं, उनमें से बहुत ही कम है जो मोक्ष असल में प्राप्त करते हैं, और उनमें से भी बहुत ही कम है जो असल में जानते हैं कि भगवान कौन है और फिर भगवान के पास जाते हैं। तो बहुत ही दुर्लभ हैं ऐसे प्राणी। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं किसी भी कारण मेरे पास अगर कोई आता है तो वो श्रेष्ठ है। तो गजेंद्र ने हालांकि कष्ट प्राप्त करने की स्थिति में भगवान को याद किया, पर फिर भी उनकी जो स्तुति है वो पूरे विश्व में भक्तों में बहुत ही प्रसिद्ध है, गजेंद्र स्तुति। क्यों? क्योंकि वो भगवान, उन्होंने भगवान को बुलाया, भगवान को पुकारा। तो यहां जो वर्णन है ये एक बहुत ही विशेष बात की है यहां, कि जो गजेंद्र का वर्णन है निर्विशेषम एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम, किसी विशेष व्यक्ति के लिए न होकर ब्रह्म के लिए, यद्यपि वह नहीं जानता था ब्रह्म कौन है। तो यहां यह विशेष बात है कि गजेंद्र को मालूम नहीं था कौन है भगवान, पर वो ये जानता था हाँ एक भगवान है जो सर्वश्रेष्ठ है। वो देवताओं के पास नहीं जाना चाहता था। ये एक अंतर होता है सकाम भक्त और अकाम भक्त में। दो तरह के भक्त हैं, सकाम और अकाम। सकाम मतलब जिसकी कुछ इच्छा है, कुछ भौतिक इच्छा है, और अकाम भक्त है जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, शुद्ध भक्त होता है। तो इसमें इन दोनों में से गजेंद्र को इस स्थिति में हम क्या मानेंगे, सकाम या अकाम? सकाम, क्योंकि उसकी इच्छा है कि मुझे ये घड़ियाल के मुंह से छुड़वाओ, बचाओ, नहीं? तो ये एक भौतिक इच्छा है एक तरह से देखा जाए। पर श्रीमद् भागवतम में वर्णन ये किया गया है कि अकाम भक्त सर्वोच्च है, इसके में तो कोई शंका नहीं है, ठीक है, दुविधा नहीं है। पर जो सकाम भक्त है वो भी कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, वो भी बहुत ही उच्च कोटि का व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसे कोई भी कष्ट हो या कुछ भी हो तो वो भगवान की तरफ जाता है, देवताओं की तरफ नहीं जाता। ये अंतर होता है सकाम भक्त और देवताओं के उपासकों में, ये अंतर है। चाहे जितना भी कष्ट हो वो भगवान के पास जाएगा कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, इस कष्ट से मुक्ति दे दो, वो भगवान के पास जाएगा, देवी देवताओं के पास नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहां गजेंद्र हालांकि जानता नहीं था कि कौन है भगवान, पर वो देवी देवताओं की तरफ नहीं जाना चाहता था। और आगे जाके प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं कि अपने तात्पर्य में कि जो ही भगवान यह समझ लेते हैं कि कोई मनुष्य पूर्णतया उसकी शरण में आकर कृपा याचना कर रहा है, त्यों ही वे तुरंत कार्यवाही करते हैं। कार्यवाही, जैसे कार्यवाही शुरू हो गई, वो हमें कई बार दिखती नहीं है कार्यवाही कैसे भगवान ने शुरू कर दी, पर जैसे ही हम सच्चे दिल से भगवान की ओर जाते हैं किसी भी चीज के लिए, सकाम अकाम कुछ भी, काम हो, भगवान की तरफ जाते हैं तो वो कार्यवाही शुरू कर देते हैं। मुझे याद है कि भक्त बनने से पहले कि मेरी इसी प्रकार की एक प्रार्थना थी। मैं कल ये पढ़ रहा था श्लोक तो मुझे वो सीन याद आया कि मैं बहुत भौतिक कष्ट में था। तो अब मैं सोचता हूं उस बारे में तो हंसी आती है कि जो कष्ट मुझे लग रहा था कष्ट है, वो कष्ट उतना बड़ा नहीं था। पर एक दिन मुझे याद है कि जहां मैं रह रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं बहुत भौतिक कष्ट में हूं, और ये मेरी रियलाइजेशन थी कि एक कोई है भगवान। और ये उस समय मेरे उस दिन मेरे मन में ये बात आई कि कहीं सुनी थी या पढ़ी थी कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे याद है कि मैं ऐसे रो रहा था आंसुओं से और अपने घुटनों पे बैठ के बाहर मेरे खिड़की से एक पेड़ था, पेड़ को देख रहा था और पत्ते हिल रहे थे उसके। तो मैं कहा भगवान जो भी है मुझे कष्टों से निकालो। तो इसी तरह गजेंद्र के जैसे मेरे प्रार्थना थी, मुझे मालूम नहीं था कौन है भगवान। पर अब कल ही मैं सोच रहा था कि जब मैंने वो प्रार्थना की उसके कुछ ही दिन बाद या कुछ एक दो महीने बाद मुझे शीला प्रभुपाद की भगवद गीता मिली थी। तो उसी ये जो प्रभुपाद का तात्पर्य है कि तभी भगवान ने कार्यवाही शुरू कर दी थी, ऐसा मुझे लगा। तो कार्यवाही उस दिन शुरू कर दी थी पर मुझे पता नहीं लगा था उस दिन। तो इसी प्रकार की मेरी निर्विशेष की तरफ प्रार्थना थी कि मुझे निकालो इस संकट से। तो गजेंद्र की जो ये स्तुति है वो यही कह रहे हैं। तो ये निर्विशेष का अर्थ निर्विशेष निराकार ब्राह्मण नहीं है, इसका अर्थ है कि वो ये समझते थे कि एक पुरुष हैं जो पुरुषोत्तम हैं, सर्वोच्च हैं, पर वो ये नहीं जानते थे कि कौन है, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी अज्ञान के कारण। पर फिर भगवान ने उनको अपनी कृपा प्रदान की और दर्शन दिया, हम देखेंगे आगे जाके। तो ये जो भगवान के प्रति हमारी प्रार्थना है वो किसी भी प्रकार से हो तो भगवान उस पर ध्यान देते हैं। पर भक्त का ये कर्तव्य है कि वो छोटी मोटी प्रार्थनाओं के स्तर से थोड़ा ऊंचा उठे। जैसे एक बच्चा होता है, उसके पास कई खिलौने होते हैं तो उसको नए खिलौने भी चाहिए और जो खिलौने हैं वो रखने हैं। अगर उससे कोई खिलौना छीन लो वो बहुत रोता है, और कुछ नया कुछ चाहिए तो वो भी बहुत रोता है। देखा कभी मार्केट में बच्चे ऐसे लेटे हुए होते हैं, रो रहे होते हैं, नहीं? इंग्लिश में कहते हैं टेंट्रम, इसका शुरू हो गया रोना धोना बच्चे का। मैं अभी मायापुर से ट्रेन में आ रहा था तो एक बच्चा मतलब रो रहा है, छोटा सा बच्चा है अपने पिता के गोद में, रो रहा है कि मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो कह रहे ट्रेन तो रुकने दो फिर बाहर ले जाऊंगा। तो ट्रेन कहीं स्टेशन पे रुकती थी आधे मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, वो ले जाता था फिर अंदर आता था, फिर वो रो रहा है बाहर जाना है। उसे भी मालूम है, बच्चा इतना बड़ा था उसे मालूम है ट्रेन चल रही है पर रो रहा है। और पिता भी इसका इतना प्रेम करता है अपने बच्चे से, तंग भी हो रहा है पर कह रहे नहीं कोई बात नहीं, वो झेल रहा था पूरे इतने घंटे, पूरे रास्ते मैंने देखा वो यही कर रहा था, बस बार बार अंदर बाहर बाहर जाना है बाहर जाना है। तो ये बच्चे की जो जिद है, कई बार भक्त जो होते हैं शुरुआत के जो भक्त, ऐसी हमारी जिद होती है कि भगवान ये कर दो मेरे लिए, वो कर दो। तो भगवान हंस रहे होते हैं कि क्या मांग रहे है? जैसे ध्रुव महाराज की इच्छा थी, मुझे ये अपने पिता से दादा से भी बड़ा राज्य चाहिए। फिर जब उन्होंने देखा भगवान को तो कह रहे क्या मांग रहा था मैं, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। पर कह रहे नहीं, भगवान ने कहा नहीं लो। ध्रुव लोक दिया। तो इसी तरह भक्तों की जो इच्छाएं हैं, जो मांग होती है भक्तों की शुरू में, उसी प्रकार की होती है, बच्चे की तरह, बच्चों की जिद की तरह। पर भक्तों को चाहिए कि वो धीरे धीरे बड़े हों और अपनी मांग जो है वो उसको बदलें, थोड़ी मैच्योर हो जाए। तो भक्त की हमेशा मांग रहेगी, पर उसमें फर्क होगा। जैसे प्रभुपाद थे, वो भी कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि मैं प्रचार करता हूं, ये जीवों को का उद्धार करता हूं। नहीं, उनकी जो जो प्रार्थना है मार्किने भगवत धर्म, उसमें क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आप चाहो तो इनके ऊपर से रजस और तमो गुण का जो प्रभाव है वो हटा लीजिए, और जो मैं इनको बोलूं अगर आप चाहें तो इनको समझ में आए। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं भगवान को। तो भक्तों की मांग होती है, पर थोड़ा मैच्योरिटी लानी चाहिए। तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कैसे हम अपनी मांग को मैच्योर बनाएं, और फिर भगवान को बहुत ही खुशी होती है कि हाँ, ये मेरा भक्त थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो जैसे पिता होता है, उसका बच्चा बड़ा होता है, तो कितनी खुशी होती है कि हाँ, अब ये थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, अब मेरे बिजनेस में हाथ बटाएगा। नहीं, शुरू में बच्चा छोटा है तो ये चाहिए वो चाहिए, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो पिता कहेंगे आ जा थोड़ा 2 घंटा दुकान पर बैठ, फिर धीरे धीरे चल आज मैं घर बैठता हूं, तू जा दुकान पर। तो इस तरह जब भक्त बड़ा होता है, मैच्योर होता है, सिर्फ आयु में नहीं अपनी मांगों में जब बड़ा होता है, तो वो ये सब मांगना बंद कर देता है। कृष्णा मुझे ये दो, ये दुख हटा दो। वो क्या बोलता है कि आपका जो बिजनेस है, जो ये प्रचार कार्य, मैं उसमें सहायता करना चाहता हूं। तो फिर कृष्ण को बहुत संतुष्टि होती है, हाँ मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। तो ये हमको चाहिए कि देखना कि अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरुओं से सलाह लेके कि कैसे हम अपनी मांगों को बड़ा करें। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा, अगर हम बिल्कुल शुद्ध मन से नहीं ऐसा चाहेंगे, तो फिर यही भौतिक जीवन में रहेंगे और वही काम वासनाएं रहेंगी, चाहे कितनी भी आयु हो जाए। जनरली भौतिक, आमतौर पर देखा गया है, जो भौतिक जीवन में जो वृद्ध व्यक्ति भी हैं, उनकी वही काम वासनाएं रहती हैं। 80 साल का, 90 साल का पुरुष स्त्री, वही काम वासनाएं जो 40 साल पहले थी। तो बड़े नहीं हुए, पर देखने से लगता है, बाह्य रूप से देखें तो लगता है कि हाँ देखिए अपने परिवार से कितना प्रेम करते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो काम है। तो ये फर्क है प्रेम में और काम में, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखने से लगता है कि सेम है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो ये जो इसमें अंतर है वो दर्शाता है कि जब सूर्य का उदय होता है संध्या सुबह के वक्त, डॉन उसे कहते हैं, तो तब सूर्य दिखता नहीं है पर रोशनी हो जाती है। सूर्य अभी दिखना शुरू नहीं हुआ, रोशनी हो जाती है। और जो शाम का वक्त है, जब सूर्य अस्त हो रहा है, जब सूर्य अस्त हो गया है पर फिर भी पूरा अंधकार नहीं हुआ, थोड़ा सा रोशनी है। तो जो सुबह का संध्या है और जो शाम की संध्या है वो एक सी लगती है, नहीं? सूरज नहीं दिख रहा पर रोशनी है, एक सी लगती है, पर बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक में सूर्य ऊपर आने वाला है, एक में सूर्य अस्त हो गया है। तो इसी तरह जो प्रेम और काम है वो एक से लगते हैं बाहरी रूप से, अरे मैं उससे इतना प्रेम करता हूं, अरे पूरा दिल से, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, कोई अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, नहीं, कोई पूरे ह्यूमैनिटी से प्रेम करता है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने से, अरे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पर वही फर्क है कि कृष्ण प्रेम जो है वो सूर्य उदय की तरह है, और ये जो काम है, जो भौतिक काम है, वो सूर्य अस्त की तरह है, देखने में सेम लगता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना आकर्षण कृष्ण की ओर और कृष्ण की भक्ति की ओर, भक्तों की ओर ज्यादा बढ़ाएं, और फिर हमारी जो ये भौतिक काम वासना है धीरे धीरे कम होगी। तो ये हमें सीखने को मिलता है गजेंद्र की स्तुति से कि कैसे हम भगवान के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना का स्तर बढ़ाते रहें। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे, किसी का अगर कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हाँ, बस उसमें अंतर ये है कि उल्टी दिशा में है, सूर्य उल्टी दिशा में जा रहा है, तो अगर कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हमारी क्या गति होगी? हम भगवत धाम जाएंगे, हमारा उद्धार होगा। और अगर किसी भौतिक रिलेशंस से, भौतिक चीजों से काम वासना करेंगे तो क्या होगा? संसार के चक्र में वापस आ जाएंगे, अस्त हो जाएगा। तो इसलिए उसके जो दिशा है अलग अलग है दोनों, काम और प्रेम की, तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो अलग अलग है, ये फर्क है। और इसीलिए कृष्ण ने ये शास्त्र दिए कि हम कैसे उस बंधन से मुक्ति प्राप्त करें, तो उसका ये हाँ उसी को वही वही यहां शास्त्रों में बताया है कि कार्य करें तो उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, तो उसे कार्य करें उसका फल कृष्ण को दें, उसे कर्मयोग बोलते हैं। कर्मयोग और भक्ति योग में बहुत छोटा सा फर्क होता है, तो कर्मयोग भी बहुत उच्च स्थिति है, पर जब हम भक्ति योग करते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, तो वो सीधा हमें सारे बंधनों से मुक्त कर। सबके लिए मुश्किल है, ऐसा वेदों में कहा गया है कि ये जो आध्यात्मिक मार्ग है वो क्षौरस्य धारा, जैसे रेजर के ऊपर चल रहे हैं, बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो ऐसा कहा जाता है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटीरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल, मतलब ये कठिन है पर भौतिक जीवन तो उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं अंत में। इसमें थोड़ा सा भी मिला, नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो मुश्किल है पर थोड़ा सा भी किया तो उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है, फायदा क्या मिल रहा है? थोड़ा सा भी किया, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, जो सबसे बड़ा भय है निम्न योनियों में पतन का, वो हट जाता है। तो अगर थोड़ी सी भी की, तो अगर ज्यादा कर ली तो क्या होगा? तो यहां जो सब उपस्थित भक्तगण है जो भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, वो तो बहुत आगे की चीज है। असल में भागवतम तो बहुत आगे की चीज है, जो पूरे क्लास में बैठे रहे किसी तरह, तो वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यहां जो है ये ग्रेजुएट लेवल की क्लास है, तो ये तो बहुत आगे की बात है। तो क्या हमें मिलेगा और क्या मिल रहा है, ये तो बहुत उच्च चीज है।
तो उस केस में तो मतलब एक तरह से वो शरणागति का लक्षण है, तो सकाम कैसे हो गया? वो तो मतलब इज नॉट आस्किंग एनी मटेरियल डिजायर, वो तो प्रोटेक्शन के लिए भगवान से वो
ये अंतर जो है सकाम और अकाम भक्तों में बहुत अच्छा अच्छी तरह से छठे अध्याय में वर्णन है। इंद्र और वृत्रासुर के युद्ध में, दोनों का युद्ध हो रहा है और इंद्र भगवान के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें युद्ध को जीतना है और स्वर्ग का राज पालन है, और वृत्रासुर भी भगवान की ओर सम्मुख हैं, पर इंद्र जो है वो सकाम भक्त हैं, उन्हें कुछ भौतिक चीज चाहिए, पर जो वृत्रासुर थे वो अकाम भक्त थे, उन्हें सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। तो ये बहुत ही मामूली अंतर दिख सकता है, पर उसका जो रिजल्ट है वो जमीन आसमान का फर्क है। तो भक्त को जो कठिनाई आती है, वो अगर सिर्फ कठिनाई को हटाने के लिए भगवान के पास जा रहा है तो वो सकाम माना जाता है। फिर जब कठिनाई हट जाती है, सब ठीक हो जाता है, तो फिर भूल गए भगवान को, फिर कठिनाई आई, फिर भगवान के पास गए, फिर कठिनाई हट गई, फिर भूल गए। दुख में सब कृष्णा भजे, सुख में भजे ना कोई, जो सुख में कृष्णा भजे दुख कहां से होए। ये प्रभुपाद ने कोट भी किया है तात्पर्य में। तो ये फर्क है सकाम और अकाम में। जो अकाम है वो हमेशा ही कृष्ण को भजता रहता है, सिर्फ दुख के समय नहीं। दुख आएगा तो भी कृष्ण को भजेगा, सुख आएगा तो भी कृष्ण को भजेगा। पर जो अकाम भक्त है, जब दुख के समय कृष्ण को पुकारता है, तो उसकी क्या होती है, जो मन में उसके क्या इच्छा होती है, वो तत्ते अनुकंपा सुसमीक्ष मानो, कि वो सोचता है एक्चुअली मुझको ज्यादा कष्ट होना चाहिए, पर कृष्णा तो छोटा सा कष्ट दे रहे हैं मुझे, मेरे पाप इतने हैं कि मुझे और कष्ट मिलना चाहिए, कृष्णा ने थोड़ा सा दिया। पर फिर भी वो कृष्ण की ओर जाता है, अपनी भक्ति नहीं रोकता, करता रहता है। हरिदास ठाकुर जब वृद्धावस्था में बीमार थे, वृद्ध थे, इतने अपनी माला नहीं कर पा रहे थे, तो महाप्रभु आए तो वो बोले कि मेरे को शारीरिक तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी यही समस्या है, मैं माला नहीं कर पा रहा ठीक से, समझ रहे हैं। तो ये फर्क है काफी। तो महाप्रभु ने कहा वृद्ध हो गए हैं, इतनी माला करने की आवश्यकता नहीं है, कम कर दीजिए। तो वो अपने शारीरिक कष्ट को नहीं देख रहे, वो अपना आध्यात्मिक कृष्ण की ओर जो उनका भाव है वो देख रहे। तो ये फर्क होता है। तो समय हो गया है, तो यहां समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, नेताय गौर प्रेमानंद।